यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुध स्तन्ति दिव्येस्तवे वेदैशांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः व्याप्तिदेव्ये नमो नमः ॐ भद्रं अन्तये मनः ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आराधे गोपाल भज मन श्री राधे आराधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे आराधे गोपाल भज मन श्री राधे आराधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे आराधे गोपाल भज मन श्री राधे आराधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सदघन चिदघन आनंद घन भगवान की असीम अहितु की कृपा के साथ प्रातः की इस पावन बेला में बैठकर ईशावास्य उपनिषद के द्वारा हम सब लोग स्वस्वरूप विचार कर रहे हैं। कल चर्चा कर रहे थे ईशावास्य उपनिषद के आठवें मंत्र के द्वारा हमारा आत्मा स्वरूप वह सर्वव्यापी है, अशरीरी है और आत्मस्वरूप पर निष्ठा बने हमारी, आत्मभाव से सर्वत्र एकत्व का दर्शन कर द्वैत की कल्पना, द्वैत का भय हमारे जीवन से पलायन कर जाए। द्वितीया द्वयम भयम भवती, जहां द्वैत भासता है वहीं भय भासता है। द्वैत में भय है, द्वैत में क्लेश है, द्वैत में दुख है, द्वैत में मोह है, द्वैत में शोक है, द्वैत में ये प्रपंच खड़ा है। इस ब्रह्म विद्या के इस पावन महावाक्य के द्वारा, पावन उपदेश के द्वारा हमारी निष्ठा आत्मस्वरूप में बने, उसके लिए बहुत सुंदर चर्चा उपनिषद के माध्यम से हमने कल की। अब आइए नवे मंत्र में इसी बात को, अंध तम प्रवशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते ततो यह अविद्या उपासते विद्यागुं रथा। अंध तम प्रवशन्ति, जो लोग विद्या की उपासना करते हैं, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, वह लोग तो घोरतम अंधकार में जाते हैं, और जो विद्या की उपासना करते हैं, विद्या की उपासना रत रहते हैं, वह लोग भी उससे अधिक अंधकार में प्रवेश पाते हैं। विद्या, अविद्या और विद्या, इन दोनों की उपासना करने वाले लोग अविद्या की उपासना करने वाले अंधकार में, और विद्या की उपासना करने वाले और घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ है ईशावास्य के प्रथम मंत्र के द्वारा, ईशावास्यमिदं सर्वम्, यह संपूर्ण जगत ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर से ढका हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम्, इस दृष्टि से ज्ञानी की जो दृष्टि है, स्वात्म दर्शन करके हुए उस ज्ञान की दृष्टि से हमें सारा जगत ईशावास ईश्वर से ही आच्छादित है, ढका हुआ है। और दूसरी बात कही, जब तक हम जिये कुर्वन्नेह कर्माणि जिजिष्यामि सद्गुण समा, ज्ञानी इस संसार में जगत को ईश्वर से आच्छादित देखता है, और वहीं कर्मवादी व्यक्ति कर्म के बल पर कर्म करते हुए 100 साल की जीने की इच्छा करता है, और जीवन को कैसा व्यतीत करें, बोले जीवन ऐसा कुर्वन्नेह कर्माणि जिजिष्यामि सद्गुण समा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हुए, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करते हुए सात्विक जो करता है, वह कर्म करते हुए जीने, कर्म न करके जीने की इच्छा न करता हुआ कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे, ऐसा श्रुति उपदेश करती है। इन्हीं दो बातों में एक ज्ञान मार्ग है और एक कर्म का मार्ग है। कर्म के मार्ग को अविद्या का मार्ग और ज्ञान के मार्ग को, ज्ञान भी दो, एक इंद्रिक ज्ञान है और एक आध्यात्मिक ज्ञान है। इंद्रिक ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान, ज्ञान और कर्म का समन्वय और ज्ञान और कर्म का समुच्चय, समन्वय माने एक दूसरे के पूरक और समुच्चय माने एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जो रहते हैं। समन्वय तो है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक नहीं, यहां कर्म विद्या और अविद्या का जो समुच्चय है दोनों साथ साथ में है। ऐन्द्रिक ज्ञान माने कर्म और ऐन्द्रिक ज्ञान में भी एक ज्ञानेन्द्रिय है और एक कर्मेन्द्रिय है। ज्ञानेन्द्रिय से कर्मेन्द्रिय से तो कर्म होता है, परंतु उन कर्मेन्द्रियों को चलाने वाली कौन है, बोले ज्ञानेन्द्रियां हैं। और इन ज्ञानेन्द्रियों से, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो कार्य होता है वह ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों एक दूसरे के समुच्चय हैं, साथ साथ में। ज्ञानेन्द्रियों से उपासना और कर्मेन्द्रियों से कर्म, कर्मेन्द्रिय कर्म करती हैं और ज्ञानेन्द्रिय उसे मार्ग प्रदान करती हैं, जिसे हम अंध पंगु न्यास कहते हैं। कर्म और उपासना, अविद्या से कर्म समझना चाहिए और विद्या से उपासना समझनी चाहिए। ज्ञानेन्द्रियां उपासना करती हैं, उपासना में लगे हुए हैं। बोले जो निरंतर उपासना में ही लगे रहते हैं, उपासना के लिए उपास्य देव हैं, आराध्य देव हैं, अपने अपने देवताओं की जो दिन रात उपासना में लगे रहते हैं, और उन उपासना से प्राप्त होने वाला जो सुख है, उस प्रकार उपासना के साथ जो लोग जुड़े रहते हैं वह भी उस तत्व के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इस पर मुझे स्मरण हो रहा है कि भगवती के परम उपासक रामकृष्ण देव जब मां की उपासना करते थे तो भगवती की उपासना करते करते वो इतने तदलीन हो जाते थे कि उनके भाव जगत में साक्षात जगदम्बा उनके सामने आकर खड़ी हो जाते थे और वह उनसे प्रत्यक्ष में ऐसा ही संवाद करते थे जैसा आप और मेरा प्रत्यक्ष में भगवती से संवाद करते हुए, बात करते हुए दिखाई पड़ते थे। रामकृष्ण परमहंस की ऐसी निष्ठा थी। परंतु रामकृष्ण देव रामकृष्ण परमहंस कब बने? परमहंस की स्थिति तो है कि जिसने स्वस्वरूप आत्मबोध आत्मज्ञान को प्राप्त किया हो, तब उनके जीवन में भगवती की उपासना करते हुए अंतःकरण शुद्ध हुआ, और अंतःकरण शुद्ध होने के उपरांत तब उनको उनके थोड़े समय के लिए उनके जीवन में तोतापुरी जी महाराज एक संत जो बड़े ही तत्वज्ञ थे, तत्वनिष्ठ थे, उन्होंने उन्हें उस तत्व का उपदेश किया, महावाक का उपदेश किया, जिस उपदेश को, क्योंकि ऐन्द्रिक ज्ञान, यहां समझना ये है कि इंद्रियों का जो ज्ञान है वह इच्छा प्रधान है, इच्छा और प्रयत्न से इंद्रियों का जो ज्ञान है, और वह ज्ञान दो तरह का है नारायण, एक इंद्रियों का ज्ञान वह इंद्रिय ज्ञान चाहे ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरा ज्ञान है स्वज्ञान, अपना ज्ञान। ऐन्द्रिक ज्ञान में तो ये हमारी कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, जिह्वा रस स्वाद लेती है, नासिका घ्रहण करती है, यह ऐन्द्रिक ज्ञान है। और दूसरा स्वज्ञान, स्वज्ञान में क्या है कि मैं अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं, और कर्ता भोक्ता मान करके कर्म का अधिकार प्राप्त होता है, उपासना का अधिकार प्राप्त होता है। और इस उपासना से इसीलिए कहा कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, केवल इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं, उन्हें पितृलोक की प्राप्ति होती है। और जो लोग अपने को कर्ता भोक्ता मानकर अपने स्व विषय ज्ञान, अपने लिए ज्ञान है कि मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, जो स्व को कर्ता मान करके चलता है, वो अपने अच्छे आचरण के द्वारा, मुझे अच्छा आचरण करना चाहिए, मेरे से कोई अमर्यादित कार्य न हो, मैं हमेशा मर्यादावान रहूं, निष्ठावान रहूं, धर्ममान रहूं, सदाचारवान रहूं, इस प्रकार का सदाचरण करते हुए जो ऐसा अच्छा आचरण करते हैं, और ये अच्छा आचरण करने के लिए वो हमेशा अपने आप को किसी दिव्य, क्योंकि देवता दिव्य हैं, दिव्य शक्तियां हैं, इन दिव्य शक्तियों का आश्रय लेकर, उनका सहारा लेकर, देवताओं के आश्रय को लेकर वह निरंतर उनकी उपासना करते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। इस प्रकार की उपासना करने से उन्हें दिव्य लोक, मतलब देव लोक आदि की प्राप्ति होती है। अच्छे आचरण से कहोगे तो स्वर्गादि लोगों की प्राप्ति तो हो गई, परंतु जो तत्व ज्ञान था उस ज्ञान से हम वंचित रह गए। और इसीलिए उपनिषद हमें ये कहती हैं, समझाती हैं कि ऐसा जो ज्ञान है जिसकी महिमा से, यह इंद्रिय ज्ञान से भी अलग, जो जिस ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहा गया है, वह अध्यात्म का ज्ञान किससे प्राप्त हो? ततो भूय इवते ततो यह विद्याउंगता, वह जो आत्मविद्या है, वह आत्मविद्या किससे प्राप्त हो? बोले उसके लिए जो प्रत्यक्ष है। मान लो उदाहरण के लिए हमारे पास, हमारे साथ कोई व्यक्ति बैठा है, वो वही व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका हमने बहुत नाम सुना हुआ था। नाम तो बहुत सुना है, पर ये मालूम नहीं था कि ये हमारे साथ बैठा है, पास बैठा हुआ है। जो उसमें एक व्यक्ति था, उसने हमें एक वाक्य से ये बोध करा दिया कि ये अमुक व्यक्ति है। जैसे ही ये वाक्य से बोध कराया हुआ, तो वो जो प्रत्यक्ष था, उस प्रत्यक्ष को ही हमने अप्रोक्ष रूप से जाना। जिसे परोक्ष और अप्रोक्ष कहते हैं। स्वर्गादि लोगों का जो ज्ञान है इंद्रिक ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, और यह परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष ही अप्रोक्ष रूप से हमें उसका अप्रोक्ष रूप से हमें उसका ज्ञान हुआ। ये किसके द्वारा हुआ? बोले इस वाक्य के द्वारा। और इस वाक्य, जिस वाक्य से हमें ये बोध हुआ, ज्ञान हुआ, वो जो प्रत्यक्ष था वो अप्रोक्ष रूप से हम उसे जान पाए, ये महावाक्य है। तो केवल शब्द के द्वारा ब्रह्म विद्या अर्थात यह महावाक्य है, जिस महावाक्य के द्वारा हमें उस तत्व का बोध हुआ, स्वस्वरूप का बोध हुआ। इसलिए उस स्वरूप के ज्ञान के लिए जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष में वह सर्व कहां नहीं है, प्रत्यक्ष है, पर प्रत्यक्ष को अप्रोक्ष रूप से अप्रोक्षानुभूति हम कर सकें, उसके लिए किसकी आवश्यकता है? बोले महावाक्य की। इन महावाक्यों के द्वारा हमने उस तत्व स्वरूप आत्मा का बोध प्राप्त किया। उसका ज्ञान तो अध्यात्म के ज्ञान के बिना, एक श्रुति ये कहना चाहती हैं कि अध्यात्म के ज्ञान के बिना हमें उस महावाक्य के बोध के बिना आत्म स्वरूप का, स्वस्वरूप का बोध नहीं होगा, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, कर्म से, उपासना से हमें नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो सकती है। उपासना करते, इसीलिए शिष्ट समुदाय में जो लोग निरंतर आत्म स्वरूप को विचार किए बिना केवल जप आदि में ही लगे रहते हैं, उन्हें तत्व का बोध नहीं होता। ये बात अलग है कि धीरे 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 वृत्ति अंतर्मुख होती हुई, और कभी भगवान की कृपा से जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब फलित होगी, परंतु प्रत्यक्ष में ज्ञान को ही एकमात्र साधन माना, ज्ञान ही एकमात्र अविद्या की निवृत्ति, विद्या ही अविद्या की निवृत्ति का कारण माना गया। महावाक्य से ही हमें प्रत्यक्षा अनुभूति, अप्रोक्षा अनुभूति हो सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं, आद्य गुरु शंकराचार्य इस प्रकार भाष्य करते हैं कि जो अविद्या रूपी कर्म की उपासना में निरंतर लगे हुए हैं। अविद्या रूपी कर्म क्या है? जो दिन रात इंद्रियों के विषयों के साथ जुड़े हुए, संसार के ऐष्णाओं का त्याग करते हुए, कभी वित्तेष्णा, लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, ये ऐष्णाएं बड़ी बलवती होती हैं, नारायण मजबूत होती हैं। इन ऐष्णाओं के साथ जो जुड़े हुए निरंतर पुत्रेष्णा को लेकर, वित्तेष्णा को लेकर, वित्त की, धन कमाने की इच्छा को लेकर, पुत्रादि प्राप्त करने की इच्छा को लेकर, लोकेष्णा, संसार में मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मुझे सब जाने, मुझे सभी पहचाने, मेरा सर्वत्र आदर मान सम्मान मुझे ये मिले, इस ऐष्णा को लेकर के, ये भी बहुत बड़ी लोकेष्णा है। इन ऐष्णाओं को छोड़ना इतना आसान नहीं है। बोले इन ऐष्णाओं के साथ बने हुए निरंतर कर्म में लगे रहते हैं। जो लोग निरंतर इंद्रिय ज्ञान, अपने इंद्रियों के ज्ञान से, और ज्ञानी कर्मेंद्रियों के साथ, क्योंकि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहती हैं, और श्री के साथ जो ज्ञानेन्द्रियों की उपासना से ज्ञानेन्द्रियों से उपासना में लगे रहते हैं। बोले ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, ज्ञानेन्द्रिय उपासना में लगी रहती हैं, कर्मेन्द्रिय कर्म में लगी रहती हैं, कर्म उपासना दोनों साथ के साथ, जिसे कहते हैं अंध पंगु न्यास के समान, या ये दोनों इस तरह से एक साथ में जुड़े हुए हैं कि अंधा व्यक्ति चल तो सकता है परंतु वो देख नहीं सकता, पंगु देख तो सकता है पर चल नहीं सकता है। परंतु ये दोनों यदि साथ मिल जाते हैं, साथ साथ मिल जाते हैं, तो इनके लिए इनकी यात्रा सहज हो जाती है। उसी प्रकार हमारी ये जब दोनों इंद्रियां साथ साथ मिलकर चलती हैं, कर्मेंद्रिय से कर्म हो और ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान हो, ज्ञान किसका, तत् देव तत् इंद्रिय संबंध, उस इंद्रिय के देवता का ज्ञान, जैसे आंखों के देव, इन आंखों के देव अश्विनी कुमार हैं, कानों के देवता वायु हैं, मन के देवता चंद्रमा हैं, बुद्धि के देव सूर्य हैं, इस प्रकार हर इंद्रिय का अपना अपना देवता है और अपने अपने देवता से हर ज्ञानेन्द्रिय का अपना व्यवहार चल रहा है, सबका अपने साथ बरत रही ज्ञानेन्द्रिय इन देवताओं के साथ व्यवहार करते हुए, इनके साथ कार्य करती हूँ, अपने को कर्ता मान करके, अपने को भोक्ता मानकर, स्वविषयिक ज्ञान इन इंद्रिय से, इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, अपने को कर्ता और भोक्ता मानने का ज्ञान प्राप्त, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये सब ज्ञान किससे हो रहा है, बोले इन ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा। और जब इन ज्ञानेन्द्रियों से इन देवताओं के साथ जुड़कर इन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है तो अपने को अच्छा कर्म करते हुए विद्या उपासते, इसको क्या कहा, विद्या का, जो केवल कर्म करते हैं उस पर विचार नहीं करते, विचारहीन अर्थात उपासनाहीन जो कर्म है वो तो केवल कर्म है, इसलिए उसको अविद्या कहा। नहीं तो यहां हमारे अंदर एक बड़ी भ्रांति हो जाती है कि कर्म से अविद्या उपासते, अविद्या की उपासना करने वाला अंधकार में गिरता है, ये बात तो सबको साफ साफ समझ आती है। और यदि ये साथ में ये कह दिया जाए कि विद्या की उपासना करने वाला भी उससे भी बड़े अंधकार में गिरता है, उससे भी गहरे अंधकार में गिरता है, तो हमें एक बड़ी भ्रांति सी हो जाएगी कि भाई विद्या की उपासना, विद्या से तो अंधकार से मिलना चाहिए, उठना चाहिए, अंधकार से छुटकारा मिलना चाहिए, पर भगवती श्रुति कहती है कि वो उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में गिरता है। बोले उससे भी गहरे अंधकार में क्यों गिरता है, क्योंकि उसके अंदर कर्ता और भोक्तापन रहता है, तो कर्ता होने पर कर्म का फल भोगना पड़ेगा, फल भोगने के लिए फिर शरीर आदि में जाना, क्योंकि कर्ता भोक्ता बनने होने के लिए जब स्व को कर्ता भोक्ता समझोगे तो स्व के कर्ता भोक्ता के फल को भोगने के लिए आखिर बार बार शरीर के बिना तो कुछ भोगा नहीं जाता, शरीर के बिना कुछ किया नहीं जाता, शरीर के बिना कोई कर्म नहीं होता है, अर्थात कर्म करने के लिए तो शरीर का होना आवश्यक है, और जब जब शरीर होगा तब तक कर्म होगा, और जब जब कर्म होगा तब तब शरीर होगा, इस प्रकार ये क्रम हमारा आगे से आगे निरंतर बनता ही रहेगा। इसलिए कहा घोर अंधकार में, इससे भी अधिक अंधकार। तब इस क्रम से बार बार के जन्मादि कर्म से विद्या और अविद्या च उपासते, अविद्या और विद्या उपासते जो इसकी उपासना करते हैं। इससे जन्म मृत्यु का आवागमन का छुटकारा प्राप्त नहीं होता। जन्म मृत्यादि के आवागमन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें इससे निकलने के लिए क्या करना होगा? बोले स्व का ज्ञान, स्व विषय ज्ञान। जो इंद्रियों के द्वारा स्व का ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो तो परोक्ष ज्ञान है, याद रखना। इंद्रियों के द्वारा हमें श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा ये ज्ञान हुआ कि देवलोक है, देवलोक में देवता हैं। वो देवता कैसे प्रत्यक्ष हैं? उन देवताओं का प्रत्यक्ष हमने अनुभव किया कानों से सुन करके, आंखों से देख करके, मन से संकल्प विकल्प करके। हमने उनका जो परोक्ष देव थे जिनके विषय में सुना था, और उन देवताओं की हमने अपने आप में अप्रोक्षा अनुभूति की। तो ये जो ज्ञान हुआ ये ऐन्द्रिक ज्ञान हुआ, परंतु दूसरा जो ज्ञान है जो आत्मस्वरूप ज्ञान है। इसलिए इन ज्ञानों को, इस व्यवहार को, इस प्रकार का जो व्यवहार है, बोली इस व्यवहार से जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान से आत्मानुभूति नहीं, उसके लिए तो महावाक्य जन महावाक्य से जो वृत्ति बनती है, महावाक्य जन्य वृत्ति, महावाक्य से जो स्वस्वरूप का बोध हुआ, अपने स्वरूप में जो बोध हुआ, महावाक्य से हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इन महावाक्यों के द्वारा वह तत्व तुम ही हो, जो सर्वव्यापक तत्त्वमसि, वह तत्व वह तुम ही हो। इस प्रकार की वृत्ति एक है, और अहम ब्रह्मास्मि, ये दोनों बात समझने के लिए, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम ही ब्रह्म हो, तत्त्वमसि तुम ही ब्रह्म हो, अर्थात तत् और तुम में जो मैं हूं सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूं। इस प्रकार की जो वृत्ति बनी, बोले किससे ज्ञान हुआ? वो महावाक्य के द्वारा। इस महावाक्य के श्रवण से जो प्रत्यक्ष अनुभव किया, उस वह मुक्त स्वरूप ही है, वह ज्ञान नहीं, ज्ञान स्वरूप ही है, वहां कुछ बना नहीं। ऐसा बोध महावाक्य ने जो बोध कराया, उस महावाक्य ने कुछ बनाया नहीं, अर्थात महावाक्य के से जो बोध हुआ उस बोध में कुछ क्रिया नहीं है, कुछ कहीं गए नहीं, आए नहीं, कुछ किया नहीं, केवल समझ भर गए। मैं हमेशा कहती हूँ बात केवल समझ में आने की है, समझने की है, समझ जाओ तो चुटकी का खेल है, नहीं तो जन्म जन्मांतर का फेर है। इस बात में घूमते रहो, कर्म उपासना के चक्र में निरंतर लगे रहें, और पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम इस चक्र के अंदर चलते रहे, बात समझ में आ जाएगी। एक बार के समझने से नहीं, कई बार जब हम इन बातों को सुनते हैं, सुनते 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 सुनते, पढ़ते पढ़ते, रटते रटते, और कब इन साक्षात भगवती श्रुति की कृपा हो जाएगी। बोले कब कृपा हो जाएगी? जब मन चित्त बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म, क्योंकि ये तत्व बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म है, नहीं तो कर्म और उपासना के व्यवहार में लगे हुए। ये कर्म और उपासना का व्यवहार कैसे चलता है, इस पर एक छोटा सा उदाहरण मुझे स्मरण हो रहा है कि एक बार एक कोई सेठ जी किसी संत को मिलने के लिए गए। जब संत को मिलने के लिए गए तो सोचा कि हमारे महात्मा के पास जाओ तो खाली हाथ क्या जाना चाहिए, तो साथ में एक सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता लेकर गए। महात्मा जी को जब वो गुलदस्ता भेंट किया तो बड़े प्रेम से टिकटिकी लगाकर वो उस गुलदस्ते को देखते रहे। तो ले जाने वाले ने सोचा कि महाराज मेरी ओर तो देख ही नहीं रहे, ये तो सारा ध्यान लगाकर इस गुलदस्ते को ही देख रहे। मन में सोचने लगा शायद ये मेरे से भूल हो गई, और उसने कहा कि महाराज मेरे से कोई गलती हो गई। महाराज ने कहा कि नहीं, तो उसकी ओर देखा। जैसे ही उस गुलदस्ते गलती हो गई, महाराज ने कहा नहीं गुलदस्ते कोई देख रहे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा तो चलो ठीक है इसे फेंकते हैं। कहा नहीं नहीं महाराज फेंकिए मत। तो तब कहा कि तुम फेंकने भी नहीं देते हो और देखने भी नहीं देते हो, तो बोलो चाहते क्या हो? बोले कहा महाराज चाहता ये हूं कि आप थोड़ा इसे देखो और थोड़ा मुझे देखो। हम यहां बात समझने की ये है, ये संसार रूपी गुलदस्ते को यदि देखते रहोगे तो भगवान परमात्मा को कब देखोगे? और परमात्मा को देखने के लिए संसार की जो प्रत्यक्ष है इसकी उपेक्षा करके फेंक दो, वो भी बात अच्छी नहीं। मैं हमेशा कहती हूं जीवन में अपेक्षा और उपेक्षा, यदि ये दोनों चीजें बनी रहीं, अपेक्षा माने ऐसी मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास ऐसा मुझे मिलना चाहिए, पाने की अपेक्षाएं, और जो है जीवन में उपेक्षाएं, हम जो कुछ प्राप्त है हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं पाने की अपेक्षा में। जो कुछ हमको ईश्वर ने दिया है हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो हमें मिला था उसका कि हम उपेक्षा कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? पाने की अपेक्षा में। इसलिए ये अपेक्षा और उपेक्षा किसी का तिरस्कार भी नहीं होना चाहिए और किसी का इतना आदर भी नहीं होना चाहिए कि हमसे किसी का अनादर हो जाए। जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें न कोई अपेक्षा हो न कोई उपेक्षा हो, जीवन सम्यक हो, बीच का हो। जब स्व में स्थित होगा तभी स्व का बोध होगा नारायण। जब तक स्व में स्थित नहीं होगा, हम अपने आप में स्थिर नहीं होंगे, तब तक ये महावाक्य से हमारी वृत्ति ऐसी बनेगी नहीं। इसलिए उपनिषद ईशावास्य ये कहती है कि स्व में अपने आप में जब हम स्थिर होंगे, हमारी वृत्ति जो वृत्ति वृत्ति नाम व्यवहार का है, जो व्यवहार ज्ञानेन्द्रियों से कर्मेंद्रियों से, जो वृत्ति व्यवहार में दिन रात लगी हुई है, कभी लोक व्यवहार में, कभी परलोक व्यवहार में, कभी सुंदर सदाचार के आचरण में वृत्ति, कभी धर्म के अनुष्ठान यज्ञ आदि के, क्योंकि उपासना में देवताओं की उपासना करते हैं तो यज्ञ आदि करते हैं, और कभी कर्म के साथ जुड़े रहते हैं तो नानाविध संसार के कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी अच्छे कर्म करते हुए और कभी बुरे कर्म करते हुए, अच्छे बुरे कर्म के साथ ही लगे रहेंगे। इसलिए हमें अच्छे और बुरे, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, अच्छा बुरा अच्छा बुरा का फर्क करते करते अच्छाई और बुराई को ही हम देखते रहेंगे तो अपने आप को कब देखेंगे? अपने आप को देखने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जिसे अपने को देखना हो उसे न अच्छा देखना है न बुरा देखना है, इंद्रिक विषयिक ज्ञान को, यही विद्या है और यही अविद्या है। इस दोनों को परिहार कर अपने से अलग कर स्व को देखे और स्व को समझे। बोले महावाक्य जो समझाते हैं उन महावाक्यों से अपने को समझे, और अपने को जब समझ जाएगा तो याद रखना यस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति, जिसको समझने से सब कुछ जाना जा सकता है। सारा विश्व ब्रह्मांड क्या है ये आपको फिर अलग अलग जानने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे माताएं हैं घर में रसोई बनाती हैं, भगोने में चावल बनाती हैं, और उन्हें चावल तैयार हुआ या नहीं हुआ ये जानने के लिए एक एक दाना दबाने की जरूरत नहीं। वो एक चावल के दाने को अपने हाथ से दबाती हैं और देख लेती हैं कि तैयार हुआ कि नहीं, उससे एक से जान लेती। उसी तरह से एक को जानने से सब को जो जान लिया जाता है, वह एक कौन, वह एक है स्व, अपने आप। अपने आप को जानने, मैं हमेशा ही ये कहती हूँ कि दुख की बात यही है कि हम सब को जानने के चक्कर में अपने आप को ही जानना भूल जाते हैं। हमसे बड़ी भूल हो जाती है, बड़ी चूक हो जाती है, भूल पड़ जाती है तो किसकी भूल पड़ती है? अपने आप की भूल पड़ती है और किसी दूसरे की भूल। अपने भूल के कारण हम अपने को भूल करके जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, जो भी देखेंगे, वो हमारा देखना, वो हमारा सोचना, वो हमारा करना जो होगा वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता नारायण, वो हमेशा अपूर्ण ही होगा, अधूरा ही होगा। जिसने अपने आप को देखा है, अपने आप को समझा है, अपने को समझने के लिए हमें अपने आप में, अपने भीतर जो वृत्ति बाहर याग, बाहर के यज्ञ तो आप करते हैं, कभी अंतर याग कीजिए, अपने भीतर यज्ञ कीजिए। अपने भीतर वो यज्ञ के अभिप्राय है, वो पवित्रता, वो निर्मलता, वो विशुद्ध पवित्रता हमारे अंदर जो आत्म स्वरूप में है, जो कभी अपवित्र होता ही नहीं, जो कभी किसी के साथ स्पर्श करता ही नहीं, असंग, वह जो तत्व है उसको हम समझ जाएं, जिसमें कभी कोई मलिनता नहीं आती, कोई अशुद्धि है ही नहीं, अपवित्रता है ही नहीं, उस पवित्र से पवित्रतर जो हमारा स्वरूप है उसे हम समझने की कोशिश करें, जो सबसे अलग बैठा उस पर अपनी वृत्ति को, अपने मन को अपने भीतर लाएं, वो कैसे हो सकेगा। मैं कई बार कहती हूँ थोड़ा सा समय निकालो, और समय निकालकर अपने बाहर के इस व्यवहार को बंद करो, इंद्रियों के बहिर्गमन से वह आत्मा न बहिर्मय है न अंतस्करण में, न बहिर्शुद्धि से न अंतःकरण शुद्धि से उस तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अंतःकरण से भी अलग है, जो बाहर से भी अलग है, जिसके लिए कहा गया है कि मनुष्य है ना, मनुष्य जिससे पोषित होता है, यह अन्न है। अन्न है, यव है, जौ आदि कहते हैं अन्नादि, जो मनुष्य का अन्न है। और बड़ा सुंदर प्रसंग ये छांदोग्य उपनिषद में आया है। और दूसरा सप्तधान्न, और दूसरा अन्न कौन सा है, बोले देवताओं का अन्न है, जो हम यज्ञादि में हुत प्रहुत, मतलब जो आहुतियां दी जाती ली जाती हैं, वह यज्ञादि के द्वारा ये देवताओं का अन्न है, इससे भोजन ग्रहण करते हैं। हम भोजन करते हैं अन्नादि को, देवता भोजन ग्रहण करते हैं जो यज्ञादि में, यज्ञ आदि में हम आहुतियां देते हैं। ये तो देवताओं का और मनुष्यों का भोजन हुआ। बोले पशु आदि का भोजन क्या है, पर दूध आदि, गाय का बच्चा दूध पी के ही पलता है और दूध से इनकी रक्षा होती है, पशु का आहार है। और अब आत्मा का आहार क्या है, आत्मा का भोजन क्या है, बोले आत्मा का भोजन तो है मन और बुद्धि प्राण, यह जो आत्मा का भोजन है, जिसे जिसके द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, प्राण के द्वारा आत्मा को समझने के लिए हमें अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने प्राणों से उस आत्म स्वरूप को, मन बुद्धि और प्राण, ये तीनों ही आत्मा के भोजन हैं, अर्थात आत्मा इन्हें ग्रहण करती है। जैसे शरीर में अन्नादि के भोजन करने से हमारे को शक्ति मिलती है और हम इससे चलते हैं, बैठते हैं, उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। यदि शरीर को अन्नादि न मिले, इसका पोषण न हो, तो ये शरीर कुछ कर सकेगा? कुछ नहीं कर सकता है। शरीर पुष्ट होते हैं अन्नादि के ग्रहण करने से। तो उसी प्रकार जो आत्मा इस मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, प्राणों के द्वारा जानने में आ रहा है, इससे अलग होते हुए भी, मन से अलग होते हुए भी, बुद्धि से अलग होते हुए भी, प्राणों से अलग होते हुए भी, जो मन बुद्धि प्राण के द्वारा जिसे हम समझा जा सकता है, वो ये मन, जिस मन के द्वारा उस परमात्मा को, परमेश्वर को, उस आत्मा को समझा जा सकता है, जिस बुद्धि के द्वारा उस आत्मा को समझा जा सकता है, बोध किया जा सकता है, जिन प्राणों के द्वारा उस आत्मा का ज्ञान हो सकता है, ये मन बुद्धि प्राण हमारे तीनों लगे हुए हैं किसमें, जिनसे आत्मा का ज्ञान हो सकता है, उन तीनों को हमने कहाँ लगाया हुआ है? हमारी इंद्रिय ज्ञान में। उसने इंद्रिय ज्ञान में इसको ही स्व समझ करके, मन को स्व समझ लिया, मन से मैं अपने आप को, मन और बुद्धि से, पहले इंद्रिय ज्ञान में माना मेरे आगे किताब है,
किताब को आंखों ने देखा, इंद्रिय ज्ञान है, आंख देखती है और मन को के पास भेजती है। मन ने बुद्धि को दिया और बुद्धि ने इस किताब को अच्छी समझी, मन ने इस किताब को अच्छा समझा तो पाने की इच्छा की, बुरा समझा तो इसे अपने से दूर हटाने की इच्छा की। मन ने तो केवल इच्छा की और बुद्धि ने इसे हटाने का प्रयत्न किया, बुद्धि ने इसे अपने पास लाने का प्रयत्न किया। प्रयत्न करने में, कोशिश करने में कौन लग गई? बुद्धि लग गई। और इस बुद्धि इसी के साथ इसे अपनाने में और छोड़ने में, पाने में, त्यागने में काम किया। किसने? बोले बुद्धि ने। अच्छा समझा तो अपनाना चाहा, बुरा समझा तो छोड़ना चाहा। बुद्धि इस काम में लग गई। तो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे प्राण, ये तीनों के तीनों कार्य कर रहे हैं। बोले किसमें? केवल इंद्रिक इंद्रियों के विषय के जो द्वारा जिसे बताया जा रहा है। इंद्रियां किसे बताती हैं? ज्ञानेंद्रियां देवताओं को बताती हैं और कर्मेंद्रियां भोगों को बताती हैं। देवता और देवता से मिलने वाले भोग, हम कभी भोगों की बात करते हैं और कभी उन भोगों को प्राप्त करने के लिए देवताओं की बात करते हैं। और इष्ट और फल जिसको कहा जाए, इष्ट और फल इसी दो बात में हम निरंतर लगे रहते हैं। ये मेरा इष्ट है और ये इसका फल है, ऐसा करने से मुझे ये फल मिल गया। हम केवल भोगों को ही कल्याणकारी समझ करके उन भोगों को प्राप्त करने के लिए, जो फल रूप है, फल को प्राप्त करने के लिए दिन रात हम लगे रहते हैं उपासना की। कौन सी देवता की उपासना करके मुझे कौन सा फल प्राप्त होगा? और उस फल की प्राप्ति की चाह में लगे रहे। जो इस प्रकार दिन रात फलों में, फल को प्राप्त करने में और इष्ट के प्राप्त, अपने लिए कल्याणकारी समझकर, बोले कल्याणकारी किससे समझा? केवल ज्ञानेंद्रियों से इतना ही को ही समझा, यही मेरा कल्याण है। देवताओं को प्रसन्न करना और उनसे अपने लिए मनो अभिलांछित, जैसी हमारी इच्छा है उसके तद्रूप फल को प्राप्त करना, बस यही मेरा कल्याण है, इसी में मेरा कल्याण है। ऐसा समझ के जो लोग दिन रात इन इंद्रियों के विषय ज्ञान में ही लगे रहते हैं, वही अंधकार में जाते हैं। इसलिए केवल इतनी मत सोचो, केवल फल को प्राप्त करना, देवताओं को खुश करके उनसे अपने अनुरूप फल की चाह करना, यही विद्या नहीं है ना, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं नारायण। हम लोग समझते हैं यही बड़ा ज्ञानमान है, बड़ी ज्ञान, जिसको ये मिल गया, इसने, इसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत विद्या बुद्धि है, देखो इसने ये सब कुछ प्राप्त कर लिया। संसार में इसीलिए कहते हैं जो बहुत ज्यादा धनवान होते हैं, लोग उन्हें बहुत ज्यादा गुणवान समझने लगते हैं, उसी को बड़े गुणी ज्ञानी गुणी समझने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति हो जाती है ना। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि जिसने भोग ज्यादा इकट्ठा कर लिया, जिसने द्रव्यादि बहुत ज्यादा इकट्ठा, धन ज्यादा संचय कर लिया, तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा गुणी ज्ञानी नहीं हो गया। गुणी ज्ञानी तो वो है जिसने इन सब को अलग करके अपने को देखा है, अपने मन और बुद्धि से इन सब को हटा करके, अपने मन बुद्धि प्राण से इनको अलग करके, जिसने मन बुद्धि प्राण को स्व स्थान पर अपने अपने गोलोक में स्थिर करके, अपने आप में लौटाकर स्थिर करके, जिसने महावाक्य से वो बोध प्राप्त किया,
वो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञानी है, वही तत्ववेता है। और ऐसे तत्ववेता के लिए उपनिषद कहती है कि वह अंधकार को भोगने वाले लोग हैं, इसलिए ऐसा कर्म न करें जिससे हमें इस घोरतम अंधकार में जाना पड़े। हमारा ज्ञान हमारा स्वरूप है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विराम दूंगी। बड़े भाव से भगवत नाम स्मरण कर लें।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।